देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना। रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्र का गणों, पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और शिव की बातचीत। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने तदनंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोली, हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानव राज होकर उत्पन्न हुआ। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धि वश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवताओं को कष्ट दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली और परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ। तदनंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं, दिनों का उद्धार करना तो आपका वाना ही है। प्रभु, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उनके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, महेश्वर की उस अमृतवाणी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव चंद्रचूड़ मरा ही समझो। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु बैकुंठ की ओर और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति हैं, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ का वध करने का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्व राज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाया और कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना तो ना मैं राज्य वापस करूंगा और ना अधिकारों को लौटाऊंगा। तो कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। जैसा उचित समझेंगे वे वैसा करेंगे। तो व्यर्थ बकवास मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, यूं कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठाक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा, हे वीरभद्र, हे नंदिन, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के लिए निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुध होकर लेस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों, स्वामी कार्तिकेय और गणेश के साथ रथ यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंदन और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिव जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दीर्घदृष्ट, विकार, ताम्रलोचन, कालांकर, बलिभद्र, कालजिन, कुटीचर, बलोन्मत, रणचलाघ, दुर्जय और दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान प्रधान सेनापति थे शिव जी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों की थी। आठों भैरव, एकदश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, बारह आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विन कुमार, कुबेर, यम, निर्जति, नलकुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्यान ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्रद्रंष्ट, उग्रदंड, कोरट तथा कोठव आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी स्वभूषा धारण करके शिव जी के साथ चली। वे उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थीं। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था। वे लाल वस्त्र शोभा पा रहा था तथा वे हर्षमग्न हंसती हुई, नाचती तथा उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी एक लंबी योजन भीषणकार जिहां लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्य, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, एक योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, एक योजन लंबी शक्ति, मुद्गर, मूसल, वज्र, खड़ग, तीखा फलक, वैष्णव शस्त्र, वरुण शस्त्र, वायव शस्त्र, नागपाश, नारायण स्त्रव, गंधास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुणास्त्र, पशुपतास्त्र, पर्वशास्त्र आदि पराक्रमी सूर्यास्त्र, कालकाल, महानल, महेशास्त्र, यमदंडास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योगिनियों तथा डाकनियों उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्मराक्षस, बेताल, राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंदन ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदनंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी जब उधर शिवदूत चला गया तब प्रतापी चंद्रचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से यह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभू के दूत के मुख से मैं युद्ध के लिए उद्दत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपने प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्रातःकृत समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपने भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रथ यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधाया। तदनंतर उस समादृत दानव राज ने कवच धारण करके युद्ध के लिए उद्दत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सूरवीर, दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकणों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर के बाहर निकले। करोड़ों प्रकार के पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुर के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हों। मेरी आज्ञा से ध्रुवों के 100 कुल के भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकलें। कालकियों, मौर्यों, दोहद्रों तथा कालकों को मेरी भी आज्ञा सुना दो। वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चलें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, सेनापति को यूं आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत से बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण महारथी महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों का अग्रगण था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 300,000 अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में पहुंचा। वहां एक मनोहर बट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुष्प क्षेत्र भारत में वह कपिल के नाम तपस्थान कहलाता है। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत की उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नामक दो रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली हैं और गोमंतक पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली हैं। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिव जी की सेना को देखा। मुने, उसने पहले शिव जी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिव जी से युद्ध ना करने के लिए कहा और शिव जी ने उसे देवताओं को राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहल प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु कैठव का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप का वध किया था। तुमने भी यह सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगजननी का जो शंभु आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उस दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत होकर देवों के अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। जैसा वह उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूं कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया।